ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने क्लियर किया और हम सभी को बताया कि यदि कोई ऐसे भाई बहन हैं जिनका मुख खुलता नहीं है, अर्थात जो ज्ञान का एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो बाबा ने आज बहुत ही सहज विधि बताई है। और आप देखेंगे कि पहले पेज पर भी गीत के आधार पर बाबा ने 7-8 लाइन एक्सप्लेन किया, सेकेंड पेज पर भी लगभग 7-8 लाइन बाबा ने एक्सप्लेन किया, तीसरे पेज पर दो बार बाबा ने 6-6 लाइन एक्सप्लेन किया गीत के बारे में, और चौथे पेज पर भी पांचवीं बार बाबा ने गीत के बारे में एक्सप्लेन किया। तो ये बहुत ही सहज विधि बाबा ने बताया। और बाबा ने कहा कि बाबा भी देखो जो गीत है ना उसके एक एक लाइन की मीनिंग स्पष्ट करते हैं, है ना। और बाबा इसी के आधार पर मुरली भी चलाते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा है ना कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, तो बाबा ने कहा कि जैसे बच्चे कहते हैं कि हमें आसमान मिल गया है ना, हम आसमान के आकाश के भी मालिक बन जाते हैं। हालांकि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है कि बच्चे आप सभी तत्वों पर विजय पा लेते हो लेकिन आकाश तत्व पर नहीं। वास्तव में तो ये बात सही है, भले सतयुग में कहते हैं कि आकाश भी हमारा राजमार्ग बन जाता है, लेकिन सत्य जो आकाश है, जो परम धाम है या ब्रह्मांड है, इसको लास्ट में क्या कहते हैं, अनंत है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो वास्तव में आकाश तत्व को हम पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जैसे कहते हो कि हमने आकाश को पा लिया, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि और क्या पा लिया आपने, क्या बताया बाबा ने कहा कि धरती है ना, तो धरती पर क्या है, सागर नदियां है ना, तो बाबा ने कहा इनके भी आप मालिक बन जाते हो है ना। और बाबा ने कहा कि जब हम सतयुग में है ना राज्य करते हैं है ना, तो उस समय क्या है, और किसी का राज्य नहीं है, और कोई विघ्न नहीं है, केवल हमारा ही राज्य होता है ना। यहां तक कि बाबा ने कहा कि चंद्रवंशी भी नहीं होते हैं उस समय जब सतयुग में हमारा राज्य है। सतयुग के बाद हम जब त्रेता में आते हैं तो चंद्रवंशी में भी हम अपना पार्ट बजाते हैं। और इसके बाद बाबा ने कहा, फिर क्या कहा बाबा ने, इस गीत के आधार पर अगर देखें कि बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि किसी की बहुत पुरानी मोहब्बत है बाबा से तो वो बहुत ऊंच पद पा जाएंगे, और किसी की नई मोहब्बत है तो कम पद पाएंगे। अर्थात कोई बहुत पुराने हैं ज्ञान में तो बहुत ऊंच पद मिलेगा, और किसी का कोई बाद में ज्ञान में आए हैं तो उनको पद कम हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, भले आप ज्ञान में देर से आए हैं लेकिन यदि आपकी मोहब्बत है, यानी आप पुरुषार्थ करते हैं अच्छी तरह से, है ना, पुरुषार्थ पर डिपेंड है, केवल समय पर नहीं डिपेंड है कि हम तो इतने साल से ज्ञान में हैं, हम इतने वर्ष से ज्ञान में हैं, नहीं, आपकी पुरुषार्थ की गति क्या है। तो यदि कम समय में भी हम पुरुषार्थ अपने पुरुषार्थ को गति देते हैं तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि केवल समय को नहीं, ये नहीं मोहब्बत का गीत नहीं गाओ, लेकिन अपने पुरुषार्थ को देखो। और बाबा ने आज बताया इसी के आधार पर कि जब हम किसी को ज्ञान सुनाते भी हैं तो उसमें भी क्या करना है। बाबा ने कहा कि जब हम किसी को ज्ञान एक्सप्लेन करते हैं या सुनाते हैं तो बार बार क्या कहें, क्या कहें, भगवानुवाच, है ना। जब हम भगवानुवाच कहेंगे तो बाबा ने कहा किसी को खराब नहीं लगेगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा, हर एक बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करेगा। एक बात हल्का सा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, जिसको एक बार मनोहर दादी ने बताया था, जो आज के सार में भी था और प्रश्न उत्तर में भी था, दोनों में ही है, मिला हुआ है। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा आए हैं क्या करने, ज्ञान और योग से श्रृंगार करने, है ना। तो ज्ञान योग से श्रृंगार जब करते हैं तो क्या होता है, ज्ञान योग से श्रृंगार करते हैं तो कौन अट्रैक्ट होता है, हमसे सबसे ज्यादा आकर्षित कौन होता है, श्रृंगार क्यों करते हैं, डेकोरेशन क्यों करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम जितना अपने श्रृंगार को कायम रखते हैं ना, तो हमसे सबसे ज्यादा आकर्षित कौन होता है, बाबा, है ना। तो यदि बाबा को आकर्षित करना है तो क्या करें, हम अपने डेकोरेशन को, अपने, है ना, उसको, है ना, अपने श्रृंगार को हम कायम रखें, है ना। तो हम जितना जितना अपने श्रृंगार को, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि ये श्रृंगार जो हमारा श्रृंगार है ना, ये कैसे कम हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, माया कम कर देती है ना, देह मान कम कर देता है ना, है ना। तो इसका प्रश्न उत्तर और सार, ये दोनों का एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। बहुत अच्छा मनोहर दादी ने बताया था इस बात को कि जैसे चिड़िया होती है ना, पंख, पंछी होते हैं कोई, तो दादी ने एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे हाथ है ना मेरा, तो दो अंगुली जो है, दो फिंगर, उनको क्या करेंगे, दो फिंगर, ये दो फिंगर चलने के लिए, ठीक है, और दो फिंगर और जो साइड के हैं, ये किसके लिए है, उड़ने के लिए। तो दादी कहते थे कि जैसे अगर आपको उड़ना है, स्थिति बनानी है, तो क्या करो, ज्ञान और योग, ज्ञान योग में मग्न रहो। तो ज्ञान योग में आप जितना नशा में रहेंगे, जितना मगन रहेंगे, तो क्या होगा, आप इस धरती पर रहेंगे नहीं, हमेशा उड़ते रहेंगे, आपका हमेशा श्रृंगार कायम रहेगा। तो यदि ज्ञान योग में रत हैं, मगन हैं, है ना, बैठे हैं यहां लेकिन मनन चिंतन कर रहे हैं, तो विघ्न आएगा ही नहीं, क्योंकि आप ऊपर उड़ रहे हैं। बाबा की याद में मग्न है तो भी ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन जो बीच की दोनों फिंगर है ना, ये क्या है, ज्ञान योग तो पंख हो गए, लेकिन जो बीच की दो अंगुली है, ये क्या है, पवित्रता और नम्रता। कि इस दुनिया में चलो तो कैसे चलो, पवित्र बनकर और नम्र रहकर। तो अगर आप नम्र रहते हैं, किसी के आगे झुकते हैं, झुक के चलते हैं, तो आपके बहुत सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। दूसरा, पवित्र बनकर, हम जितना पवित्र बनकर रहेंगे, जितना हमारा आचरण पवित्र होगा, तो इस दुनिया में रहते हुए भी हम विघ्नों से परे रहेंगे। लेकिन यदि अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है, उड़ना है, तो ज्ञान योग में मग्न रहना है। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा आज, कि ज्ञान मार्ग की सीढ़ी, जो ऊंची सीढ़ी, कौन चढ़ सकते हैं, कौन चढ़ सकते हैं, जिनका कहीं भी लगाव झुकाव नहीं है, है ना। लगाव झुकाव यदि है, या आपस में किसी का बहुत स्नेह तो नहीं कहेंगे, आपस में प्यार है किसी का, तो क्या कहेंगे उसको। तो बाबा ने कहा, अगर आपस में किसी का प्यार है एक दूसरे से बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, हमेशा उनकी ही याद आती रहेगी, और उनकी याद आएगी तो जितना उनकी याद आएगी तो क्या होगा, और क्या होगा, बोझ बनता जाएगा, भारी होते जाएंगे, है ना। जितना भारी होंगे तो ऊपर चढ़ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इस ज्ञान मार्ग में यदि हमें उच्च जाना है, तो हमारी बुद्धि कहीं लगे नहीं, किसी और में झुकाव में ना आए। क्योंकि हमने देखा यहां भी कई भाइयों को, जो 2 बजे अमृत वेला, सालों से, 25-30 साल से 2 बजे अमृत वेला उठे हैं, 2 बजे से अमृत वेला किया है, मुरली क्लास किया, सब कुछ, जीवन बेदाग रहा है, हमेशा उड़ते रहे। ऐसी आत्माएं भी क्या हुआ, आज नहीं है। क्यों क्यों? कितना भी अच्छा पुरुषार्थ कर लो, लेकिन यदि आपका संग पर संभाल लिए ना, तो इसीलिए कहते हैं संग तारे कुसंग डुबोए। आप कितना भी अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, कितना भी अच्छा पुरुषार्थ है, लेकिन यदि किसी के प्रति आपका झुकाव हो गया, लगाव हो गया, तो ये ऐसा ही है कि गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, स्टेयरिंग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उसको ड्राइव करने वाला ठीक नहीं है तो क्या होगा, है ना? तो आपका पुरुषार्थ भी कितना सही है, कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर डायरेक्शन आपका गलत हो गया ना, अब कितना भी तेज चल रहे हैं, कोई कहेगा तो देखो कितना तेज इनका गति, कितनी तेज है, कितने तेज जा रहे हैं, कितनी तेज गति है, लेकिन पता चले कि इनको जाना चाहिए बॉम्बे और ये जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो क्या कहेंगे? जाना है बॉम्बे और जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, और कहेंगे देखो कितना तेज जा रहे हैं। अरे तेज जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, फिर तो लौट के आना पड़ेगा इनको ना, है ना? तो इसीलिए केवल पुरुषार्थ नहीं, हमारा इस पर ध्यान बहुत होना चाहिए कि हमारा संग किसके साथ है, हम किसके साथ रहते हैं, हमारी बुद्धि कहीं और अटकती तो नहीं है, और किसी में हमारा झुकाव तो नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने लास्ट पेज पर भी यही कहा कि जो बुद्धि है ना, बुद्धि उड़ने के लिए बुद्धि क्या होनी चाहिए, बुद्धि क्या है, यही पंख है ना, तो बुद्धि जितनी हल्की होगी, बुद्धि जितनी हल्की होगी उतना हम क्या कर सकेंगे, उड़ सकेंगे। यदि बुद्धि हल्की नहीं है तो क्या होगा, हम नीचे आ जाएंगे, उड़ नहीं सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि और बुद्धि भी हल्की कब होती है और भारी कब होती है, जब हम अपनी देह के बारे में सोचते हैं, देहधारियों के बारे में सोचते हैं, संबंध के बारे में सोचते हैं, तो अब जितना इसके बारे में सोचेंगे इतना क्या होता जाएगा, होते जाएंगे भारी होते जाएंगे, कि अपनी देह या किसी भी देहधारी या जिसको बाबा ने कहा ममत्व है ना। तो यदि ममत्व है हमारा देहधारियों में, देह में, तो इससे भी हम क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, और बुद्धि भारी होगी तो उड़ नहीं सकेंगे। और बुद्धि भारी कैसे होती है, बुद्धि वीक कैसे होती है, जब बहुत ज्यादा संकल्प होता है, बहुत ज्यादा विचार होते हैं, बहुत ज्यादा थॉट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा किसी से जुड़ रहे हैं, किसी के बारे में, तो जितना जितना सोचेंगे इससे क्या होगा, बुद्धि आपकी कमजोर होती जाएगी, जितना सोचेंगे बुद्धि वीक, और जितने आपके थॉट कम, जितने थॉट कम उतना क्या होगा, उतनी बुद्धि हल्की होगी, उतना बुद्धि उड़ सकेगी, है ना? तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा आज के वरदान में भी यही कहा ना, कि जो छोटी छोटी बातें हैं, कोई बातें भी होती हैं, तो बातों को भी पकड़ लेते हैं, है ना, हम बातों को पकड़ लेते हैं, देखो उसने ऐसा क्यों कहा, तो ये जो हम बातों को पकड़ते हैं ना, ये किसकी निशानी है, वीकनेस की। हम किसी बात को छोड़ते ही नहीं है, उसने ऐसा कह दिया वो तो कह दिया, लेकिन हम उसको भी बार बार, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमारा इनके ऊपर इतना फेद था फिर भी इन्होंने ऐसा कर, ऐसा बिहेव किया, तो उनके व्यवहार को, उनकी बातों का जो हम बार बार चिंतन करते हैं, तो ये क्या हुआ, छोटा बनना हुआ, उनके प्रेशर में, उनके दबाव में आना हो गया, उन बातों की दुनिया में आ गए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये भी कला है, बड़ी बात को भी छोटी बना देना, बाबा ने कहा ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि क्या करो आप बड़े बन जाओ, आप बड़े बन जाओ तो बातें छोटी बन जाएंगी। और इसीलिए इसके बारे में आज क्या बाबा ने कहा वरदान में, कि अगर इस विधि से चलना है तो क्या करो, कैसे तो कैसे बड़ी बात छोटी हो जाएगी, तो बाबा ने कहा कि हमारा ध्यान किसके ऊपर हो, किसके ऊपर हो, स्थिति के ऊपर। सदैव हमारा ध्यान स्थिति के ऊपर हो, परिस्थिति के ऊपर नहीं, कि क्या क्या बातें चल रही है। जो भी बातें चल रही है, किसी ने हमसे अच्छा व्यवहार किया, किसी ने कुछ बैड बिहेव किया, कोई क्या कर रहा, वो अलग चीज है, ये परिस्थितियां हैं, ये बातें हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है उस समय। उस समय हमें जो हमारा ध्यान किस पर हो, किस पर हो, अपनी स्थिति पर है ना, अपनी स्थिति पर। तो जो बाबा ने कहा कि जब, जैसे मान लीजिए हम समझते हैं कि हम आत्मा हैं, आत्मा समझकर चलते हैं, तो क्या कहा बाबा ने कि यदि आप आत्मा समझकर चलते हैं तो आप लंबा चलते रहेंगे, बहुत दूर तक चले जाओ, किलोमीटर, माइल माइल माइल, लेकिन आप थकेंगे नहीं। बाबा ने कहा ना, अब क्या होगा, अब बाबा ने कहा आप हवा के माफिक उड़ते रहेंगे, है ना। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि आप किसका अभ्यास करो, जैसे आप बैठ जाते हैं, 5 मिनट आपको टाइम मिलता है, 10 मिनट टाइम मिलता है, तो कहीं भी टाइम मिलता है, 2 मिनट भी टाइम मिलता है, तो क्या करें, जैसे एक्सरसाइज के बाद शवासन करते हैं ना, शवासन में क्या करते हैं कि कहीं बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो, है ना, ऐसा फील करते हैं, कहीं मूवमेंट नहीं। लेकिन यहां क्या कहते हैं, मूवमेंट नहीं, क्या करें, जैसे आपको 2 मिनट भी टाइम मिलता है, 5 मिनट भी दिन में, जब भी आप बैठ जाओ, अब बैठ के अपने सिर से लेके पांव तक एक एक देखते जाओ, क्या देखो कि मेरा सिर क्या है, लाइट का, एक एक अंग देखते जाओ, लाइट का, लाइट का, इसी को रिपीट करो बार बार, अपने भी शरीर को देखो लाइट का, दूसरे को भी अगर देखते हैं तो लाइट का। तो बाबा ने कहा अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, बाबा ने कहा अगर ये अभ्यास करेंगे तो अंत काल में यह स्थितियां जब बहुत विकराल होंगी ना, कहीं लड़ाई मार काट सब कुछ चल रहा है, उसके बीच से भी आप गुजर रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस है ना लाइट में रहने की, तो लोगों की नजर आपके ऊपर जाएगी नहीं। इसने हमने इसका प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिकल खुद किया बहुत बार, बैठ के एक साइड में बैठ गए, और जहां पूरी गैदरिंग है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे जगह पर भी बैठ के खूब प्रैक्टिस किया कुछ दिनों तक, एक दो दिन नहीं, कुछ दिनों तक। तो उसके बाद कई लोग यही कहते थे कि आप यहां थे नहीं क्या, कहीं गए थे क्या, तो ये हमने तो देखा है, तो चमत्कार जैसा है, इसका बहुत बड़ा कमाल। तो जितना भी हो सके इसके प्रैक्टिस हम करें, जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी है, सरल है। तो इससे क्या है, हम जो बातों में फंस जाते हैं, बातों में अटक जाते हैं, तो बातों के प्रभाव से हम परे हो जाएंगे। तो जितना हो सके अभी हमारा ध्यान इसी पर होना चाहिए कि हमें स्थिति अपनी श्रेष्ठ बनानी है। अभी बातों को पकड़ने का समय नहीं है, किसी ने क्या कहा, ये सब वो बातें तो चलती रहेंगी, लास्ट तक कोई ना कोई बात रहेगी, इसलिए बातें खत्म करने का इंतजार न करें। हमें क्या करना है, स्थिति श्रेष्ठ अपने, इस समय हमारी क्या स्थिति है, इस पर ध्यान रखें, इस पर ध्यान दें। इसी प्रकार बाबा ने क्या कहा स्लोगन में, कि बरदाता को क्या करो, बरदाता को अपना साथी बना लो, तो क्या हो जाएगा, झोली किससे भर जाएगी, बरदानों से। कौन सी झोली, माताओं के पास झोली है बरदान रखने के लिए, माताएं कहां रखेंगी बरदान को, बुद्धि रूपी झोली में। बहुत, तो बाबा ने कहा कि बरदाता बाप को क्या करो, साथी बना लो, साथी बना लो। क्यों, बाबा हमारा साथी नहीं है, बाबा किसी का दुश्मन भी है क्या, बाबा तो हर एक का साथी है, तो साथी बना लो अर्थात, साथी बना लो अर्थात हमें बाबा का साथी बनना है। बाबा तो साथी हर एक का है, लेकिन हमें बाबा का साथी बनना है। कैसे बनेंगे, हम बाबा के जितना साथ रहेंगे ना उतना साथी बनेंगे, बाबा के कार्यों में, बाबा के हम जितना मददगार बनेंगे, बाबा की सेवा में, बाबा की यज्ञ में, तो हम ऐसे साथी बनेंगे ना। केवल कहने से तो नहीं होगा कि बाबा मेरा साथी है। नहीं, साथी हैं तो बाबा के हर कार्य में हम भी मददगार बने। ओम शांति।